जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं खूबसूरती की, हमारे आसपास सब कुछ कहीं ना कहीं खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। चाहे वो हमारी प्रकृति हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वस्तु हो, कोई भी चीज, हम हर चीज में खूबसूरती को ढूंढना चाहते हैं। कई बार अपने आप को भी हम खूबसूरत ही देखना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो इनर ब्यूटी है उसे हम भूल चुके हैं। अपने अंदर की जो आवाज है, अपने अंदर की जो सरलता है, उसे हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। उसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति।
ओम शांति,
स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
थैंक यू
प्रोफेसर साहब। जब हम बात करते हैं खूबसूरती की, आज इतने सारे ब्यूटी पैजेंट्स हो रहे हैं, आज इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, देखने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन उस दौड़ में हमारी इनर ब्यूटी कहीं ना कहीं खो सी गई है, इसके बारे में कुछ बताइए।
इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी
जी,
दो अलग अलग पहलू हैं। आज के इस कलयुग का जो वातावरण अभी बना है, इसमें लोगों का वन साइडेड अप्रोच हो गई है
जी।
उन्होंने केवल आउटर ब्यूटी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी कि जो रियल ब्यूटी थी, असली सुंदरता थी, जो आंतरिक सुंदरता थी, उसको भुलाकर केवल बाह्य सुंदरता को ध्यान देना शुरू कर दिया। और बाह्य सुंदरता स्टार्टिंग का एक पहलू है, जो आपका लुक है वो केवल आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है।
पर वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो भी तो वो बात है ना।
फर्स्ट इम्प्रेशन, चलो एक अच्छी बात है कि फर्स्ट इम्प्रेशन है, लेकिन अगर आप अंदर से सुंदर नहीं हुए तो फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी इम्प्रेशन पड़ेंगे वो बिल्कुल खराब पड़ेंगे और आपकी असलियत बाहर आएगी। इसलिए आउटर ब्यूटी केवल ब्यूटी के बारे में कहते हैं, ब्यूटी इज द ओनली स्किन डीप। जहां तक ये चमड़ी है, जहां तक स्किन दिख रही है, ये यहीं तक ही है। स्किन के अंदर आप चले जाओ, एक सेंटीमीटर स्किन के अंदर आप चले जाओ, ऑल आर द सेम। अंदर वही खून है, वही ब्लड है, वही स्केल्टन है बोन्स का, वही मांस है, वही सब कुछ है। और उसके भी अंदर चले जाओ तो अंदर क्या है, जो हम खाते हैं पीते हैं वो सारा वेस्ट के रूप में अंदर है। ये स्किन के, स्किन से एक अच्छी सी पैकिंग करके हमारे सामने अंदर, जैसे कोई कूड़ा हो अंदर, कोई बाहर गंदी चीज हो और उसको बाहर से अच्छा सा पॉलीथीन लगा के कोई पैक कर दे, है तो वही
कूड़ा ही है।
तो केवल शरीर की ब्यूटी को देखना तो ये है कि जैसे किसी की पैकिंग कैसे कर रखी है, अंदर वही है। लेकिन आंतरिक ब्यूटी वो आपकी आत्मा से जुड़ी है, वो आपके दिल से जुड़ी है, वो आपके मन से जुड़ी है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते।
बिल्कुल ठीक कहा।
खूबसूरत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे होना बहुत बड़ी बात है।
पर प्रोफेसर साहब, कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति अंदर से खूबसूरत है कि नहीं, क्योंकि देखने में तो मुझे सामने से चेहरा ही नजर आ रहा है। अब शुरुआत अगर मैं किसी से मिलती हूँ और अगर वो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है तो मुझे तो पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से खूबसूरत है कि नहीं है, तो ऐसे में जज कैसे किया जाए?
जैसे ही आप दूसरे के व्यवहार में आएंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ कोई डीलिंग करेंगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कि ये आदमी कितना पानी में है। इसके अंदर केवल बाह्य सुंदरता है या अंदर की सुंदरता उसके गुणों से झलकेगी, उसके वे ऑफ वर्किंग या उसका जो व्यवहार करना है, व्यवहार कला से उसका बाहर आएगा कि ये आदमी कितना सहनशील है, कितनी पेशेंस इसके अंदर है, कितना ये व्यक्ति कोऑपरेटिव है।
सो ट्रू। अभी इस बात से मेरे दिमाग में एक बात आया प्रोफेसर साहब, सपोज मैं गई हूँ किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए, और वो मुझसे तो बड़े प्यार से बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वेटर आता है उसे ऑर्डर दे रहा है, उससे थोड़ा सा कड़क होकर के बात कर रहा है, उधर ही पता चल जाता है कि वो मेरे साथ फेक है, क्योंकि अगर वो किसी और व्यक्ति के साथ जो उससे नीचे है उससे ऐसे रूडली बात कर रहा है, तो मतलब वो मेरे साथ में सिर्फ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है।
जस्ट एक्टिंग हो रही है।
सो ट्रू।
वो आपको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं और आप वहां गए हैं, तो आपके साथ आपसे उन्होंने पैसे निकालने हैं, इसलिए आपके साथ बाहर बाहर से अच्छी एक्टिंग की जा रही है,
लेकिन
अंदर से वो व्यक्ति कैसा है, तो उसका बिहेवियर तो सबके साथ अच्छा होना चाहिए।
Exactly.
उसका बातचीत करना सबके साथ मिठास
एक समान
होना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, आपको याद हो
जी,
कि 1893 में शिकागो गए थे, वहां विश्व धर्म संसद थी, तो पहले बार वो अमेरिका गए, भारत से कोई जाता नहीं था उस वक्त, वो गए और उन्हें वहां एड्रेस करना था। वहां वो सड़कों पर घूम रहे थे, तो वहां के जो बॉयज थे उन्होंने उनकी ड्रेस देखी कि किस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हुए, तो एक मजाक के पात्र उनके लिए बन गए। तो उनकी ड्रेस को देख के उन्होंने हंसी मजाक किया, कहीं कुछ उनको कहा, तो विवेकानंद जी ने उनको एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन योर कंट्री टेलर मेक द पर्सनैलिटी, कि आप क्या हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, टेलर डिसाइड करता है
कपड़ा देख के
और कपड़े सिल के। बट माइक, आई बिलोंग टू दैट कंट्री इन विच करेक्टर मेक योर पर्सनैलिटी।
वाओ।
तो हम भारतवासी हैं, हम कपड़ों से, हम अपने बालों से, अपने पोशाक से, या कोई अच्छी घड़ी या नई नई फैशनेबल चीजें पहनने से अपनी पर्सनैलिटी बनाने वाले नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी हमारी करैक्टर से है, हमारी पर्सनैलिटी हमारी चरित्र से है। और वही विवेकानंद जी अगले दिन जब उन्होंने एड्रेस किया, तो अपनी भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका लोहा सारी दुनिया को वहां मनवाया। वो कपड़ों से नहीं मनवाया, उनका जो बातचीत थी, उनका जो
तरीका
था और जो बात उन्होंने कही, उससे दुनिया उनके आगे झुकी। तो लॉन्ग रन में ये बाहर की ब्यूटी आपके काम नहीं आती, ये जस्ट थोड़ी सी देर के लिए किसी के अंदर गलत फहमी पैदा करने के लिए, थोड़ी देर के लिए कोई धोखा खा सकता है। जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है वो व्यक्ति धोखा खा लेगा, और खाएगा फिर भी धोखा ही। और जो अंदर की ब्यूटी की तरफ ध्यान देता है, अपने मन की ब्यूटी, अपने विचारों की ब्यूटी, अपनी वाणी की ब्यूटी और अपने कर्म की ब्यूटी, वही आदमी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होता है।
बिल्कुल।
एक बार एक राजा था
जी,
राजा ने ऐलान किया कि एक महीने के अंदर सभी शहर के जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, मैं उनके हाथ चेक करूंगा एक महीने के बाद, जिसके हाथ सबसे सुंदर होंगे उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही ये डिक्लेरेशन हुई, सारे शहर में, सारे नगर में, सारी स्टेट में होड़ लग गई लोगों की अपने अपने हाथों को सुंदर बनाने की। नए नए तरीके के साबुन खरीदे गए, अच्छी अच्छी क्रीम्स लोगों ने लेनी शुरू कर दी, कईयों ने काम करना बंद कर दिया कि कहीं हाथ फट ना जाए, हाथ हमारे सख्त ना हो जाए, कईयों ने अपने हाथों को सुंदर बनाने के लिए मेहंदी लगा ली, कईयों ने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा लिया, ताकि जब हम राजा को हाथ दिखाएं तो हमारे हाथ सबसे सुंदर हाथों में शामिल हों। एक महीना बीता, सारे लड़के लड़कियां राजा के पास पहुंच गए और अपने सुंदर सुंदर हाथ राजा को दिखा रहे थे। राजा सबके हाथ देख रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि देखो कितने अच्छे अच्छे हाथ लोग बना के लाए हैं। इतने में एक लड़की दौड़ती दौड़ती आई और उसने, राजा की नजर उसके ऊपर गई, तो राजा ने पूछा तुम लेट क्यों हो गई। उसने कहा कि मैं रास्ते में आ रही थी, तो रास्ते में एक व्यक्ति किनारे पड़ा था, वो उसको हेल्प की जरूरत थी मेरी, वो बीमार था, उसे हॉस्पिटल ले जाना था, तो मैं उसकी मदद करके आई, इसलिए आई एम सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई। तो राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथ देखे, और राजा ने डिक्लेयर किया कि यही हाथ सबसे सुंदर है।
बहुत अच्छा।
तो हाथ सुंदर वो हैं जो मुश्किल वक्त पे किसी का सहारा बन सके, आंखें सुंदर वो हैं जो दूसरों के गुणों को, दूसरों की अच्छाइयों को देख सके, मुंह सुंदर वो है जिस मुंह से मीठे बोल निकलते हों, दूसरों के काम के बोल निकलते हों, वरदानी वचन निकलते हों, वो मुख सुंदर है, वो चेहरा सुंदर है जो दूसरों की खुशी को देख के मुस्कुरा सके। तो हमें ये सुंदरता अपने जीवन में लानी है, इसे सिंपलिसिटी भी हम कह सकते हैं।
बिल्कुल।
ये ब्यूटी, इनर ब्यूटी इज द सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ब्यूटी। हम सिंपल रहना आज भूल गए हैं, सिंपल सादगी को छोड़कर फैशन की तरफ जब से मुड़े हैं, तब से हम दिखावे की होड़ में आ गए हैं। जो हम हैं नहीं वो लोग हमें देखें।
पर प्रोफेसर साहब फैशन तो जरूरी है ना, फैशन रहेगा तभी तो हम अपडेटेड रहेंगे अपनी पूरी सोसाइटी में।
फैशन सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फैशन है क्या चीज। जो लोग कम से कम लोग करते हों वही फैशन होता है, जो सारे ही करें वो फैशन नहीं होता।
अच्छा,
तो आजकल की दुनिया में फैशन ना करना ही फैशन है। क्योंकि बाकी लोग तो सब अपडेट रखते हैं, अपनी नई नई ड्रेसेस पाएंगे, अपने बालों का स्टाइल चेंज करेंगे, अपने अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज पहनेंगे, अच्छी अच्छी घड़ियां, मोबाइल, कई तरह के फैशन है। तो ये तो सारे ही कर रहे हैं। जो लोग कम से कम करते हैं वो फैशन होता है।
और एक और चीज मैंने नोटिस की है, जो जितने ज्यादा रिच होते हैं उतने ही सिंपल कपड़े पहनते हैं।
उतने सिंपल पहनते हैं।
मैंने हमेशा नोटिस किया है कि उनके ऊपर में ज्यादा कभी भी मैं बीड्स नहीं देखूंगी, बहुत सारी ज्वेलरी पहने हुए नहीं देखूंगी उन्हें। उन्हें बहुत ही सिंपल और क्लासी कपड़े पहने हुए देखा है मैंने। तो अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें, अगर हम ब्यूटी की बात करें और अगर हम सोबरनेस की बात करें, तो वो क्लासीनेस से रिलेट करता है, ना कि ओवर डेक्ड अप से।
ओवर मेकअप आपने कर लिया, आप असली में कुछ और हैं, दिखावा कुछ और चीज का कर रहे हैं, तो वो क्या नेचुरल चीज हुई कि आर्टिफिशियल हुई? तो आर्टिफिशियल लोगों को अट्रैक्ट करेगी या नेचुरल अट्रैक्ट करेगी? मान लो मेरे हाथ में दो गुलाब के फूल है, राइट हैंड में बड़ा गुलाब का फूल है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन वो नकली है, कागज का है, और लेफ्ट हैंड में असली वाला गुलाब का फूल है जो खुशबू दे रहा है, थोड़ा इतना सुंदर नहीं है और है भी छोटा। अब आप दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे?
असली गुलाब
को। क्यों? क्योंकि उसमें खुशबू है। असली चीज असली ही होती है,
पर
और असली चीज सादगी में है।
बिल्कुल, पर प्रोफेसर साहब वो तो खराब हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो फिर मैं नकली प्रेफर करूंगी सो दैट वो काफी टाइम तक रहे मेरे साथ।
लेकिन असली सुंदरता में ये नहीं है। अच्छा। जो व्यक्ति इनर ब्यूटी है वो लाइफ लॉन्ग चलती है।
अच्छा।
और यहाँ पर जो आउटर ब्यूटी है वो आपकी उम्र के साथ ढल जाएगी।
Actually,
आपका रंग रूप बदल जाएगा।
हाँ।
आप देखना, जो पुराने जमाने में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस होती थी, अभी कभी उनके टीवी में आप देखिए इंटरव्यू, अब जो एज्ड हो गई हैं, अब आप उनका चेहरा देखिए, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये वही एक्ट्रेस है।
एकदम सही कहा आपने प्रोफेसर साहब। जब हम बात करते हैं खुशबू की, इन दोनों के बीच का अंतर और कुछ नहीं है, उसकी खुशबू का है। इसका अगर भले वो नकली वाला जो फूल है उसका रंग रूप वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन उसकी खुशबू तो है ही नहीं। तो इसीलिए अगर असली लेंगे तो वो कुछ पल के लिए आप उस खुशबू को तो महसूस कर पाएंगे,
उस महसूस को कर पाएंगे।
हाँ।
और असली चीज का फायदा ये है कि जो असली ब्यूटी है, जो सादगी में है, सिंप्लिसिटी में है, वो आपको परमानेंट फायदा देती है, वो धोखे में नहीं रखती। आर्टिफिशियल ब्यूटी जो है, जो आउटर ब्यूटी है, जो हम अपनी बढ़ा रहे हैं दूसरी चीजों को यूज करके, वो आपको भी धोखे में रखेगी। जो आप हैं नहीं वो आप समझ रहे हैं, और साथ में जो आपको देख रहा है वो भी बेचारा धोखे में, गलतफहमी का शिकार हो रहा है। और दूसरा नुकसान जो फैशन का है, ये फिजूल खर्ची को बढ़ावा देता है। फैशन आज इतना जल्दी चेंज होता है कि आज जो फैशन है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है परसों नहीं रहेगा, ट्रेंड चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब आपको ड्रेसेस भी बार बार बदलनी पड़ेंगी, हर चीज बदलनी पड़ेगी, तो कितनी वेस्टेज हो रही है। इस दुनिया में इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है कि आप बार बार लोगों को चेंज करते रहो, इन रिसोर्सेज को बार बार ड्रेसेस को चेंज करते रहो, इसका मतलब है आप दूसरे का हक का ले रहे हैं। चाहे आपके पास पैसा भी है, लेकिन वो दूसरे को मिलना चाहिए। 80% ऑफ द रिसोर्सेज इस वक्त के दुनिया के 20% पॉपुलेशन यूज कर रही है।
अच्छा।
और 20% रिसोर्सेज 80% लोगों को यूज करने पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे ये फैशन है, जिन्होंने कई लोगों को पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं मिल रही, बस में, रोडवेज की बस में भी जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, और कई लोगों के पास 10-10 गाड़ियां हैं।
सही बात है।
घर में 5 मेंबर हैं, गाड़ियां ज्यादा हैं, 5 से ज्यादा गाड़ियां हैं, इसका मतलब खड़ी है, वेस्ट हो रहा है।
और ये एक और बात, ये कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल भी बन गया है। अगर जितने फैशनेबल हूँ मैं, जितने ज्यादा मैं चीजों की चकाचौंध में जा रही हूँ, उतनी ही ज्यादा मैं फैशनेबल हूँ और उतनी ही ज्यादा मैं अपमार्केट हूँ। ये भी एक तरीके की सोच है।
ये भी गलत फहमी है कि हम फैशन करके अपने आप को, है तो दिखावा ही, दूसरे को हम दिखावे के बल पे जिसे कहना शो करना, जो हम हैं नहीं वो हम दिखा रहे हैं। मान लो हैं भी, कोई अमीर है वो गाड़ियां अफोर्ड कर सकता हो, कहता है मैं हूं, लेकिन क्या उतनी जरूरत उसको है? उसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है, क्या वो चीज वो दूसरे यूज करते तो उनका भला होता, उनके यूज में आती तो अच्छा रहता, केवल मैं ही यूज करूं ये भी एक रॉन्ग चीज है। अगर वही चीज हम दूसरों को बांट दें तो वो चीज हमें ज्यादा सुख दे सकती है। और फैशन गलत फहमी पैदा करता है, दिखावे को बढ़ावा देता है, और जो सिंपलिसिटी है, सिंपल रहना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, पुराने जमाने में लोग कहते थे, आज उल्टा हो गया जब से फैशन की होड़ मची है, अब लोग कहते हैं हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। थिंकिंग तो लोगों की बिल्कुल ही पोल्यूट हो गई है, थिंकिंग के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, केवल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर करने में लगे हुए हैं कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, हमारे पास हर फैसिलिटी हो, और फैसिलिटी भी एक नहीं बल्कि कई हो, तो वो चीज हमें रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती है, हमारे अंदर लोभ वृत्ति को बढ़ाती है। और लोभ लालच में जब व्यक्ति होता है, इसका मतलब वो दूसरे का छीन के गलत मीन्स को यूज करके अपने पास चीजें लाने के लिए प्रयास करता है।
प्रोफेसर साहब, जब मैं बात करूँ सिंप्लिसिटी की अर्थात सादगी की, इसके क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि हमने फैशनेबल होने के नुकसान तो देख लिए, लेकिन अब सिंपल रहने के फायदे भी जान ले।
फायदे तो सबसे बड़ा सिंपल रहने का ये फायदा है कि जो व्यक्ति सिंपल है उसकी लाइफ कई तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच जाती है।
अच्छा।
सिंपल लिविंग का ये बेनिफिट है कि हम लाइफ को बिल्कुल सरल तरीके से लेते हैं। तो जिसकी लाइफ सिंपल है उसके विचार भी बिल्कुल सरल बन जाते हैं, उसके विचारों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो एडजस्ट कर लेता है। और जिसने अपनी जिंदगी को पोजेशंस के पीछे लगा के, व्यक्ति वस्तु वैभव के पीछे, मैन मटेरियल और मनी के पीछे लगाया है, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
अच्छा।
बहुत ही उलझा हुआ पाता है। फैशन जब वो करता है, फैशन को किसी ने कहा कि एक फंदा है, फैशन का फंदा है जो आदमी की इंडिपेंडेंस को छीन लेता है, स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो अधीन हो जाता है उन सब फैशनेबल चीजों के। जब तक वो ना मिले तब तक उसको सेटिस्फेक्शन
नहीं
मिलती। और जो सिंपल है वो असली जिंदगी जी रहा है, सादगी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आप कभी भी देख लीजिए कि दो तरह के मेकअप किसी ने किया हो, एक ऐसे ही सुंदर हो और एक मेकअप से सुंदर हो, तो कौन अट्रैक्ट करेगा?
जो रियल में सुंदर है। बिल्कुल।
तो सादगी हमारी पोशाक की भी है, सादगी हमारे जीवन की भी है, सादगी हमारे विचारों की भी है। तो ये सादगी हर स्तर पे हमें लानी है, सादा जीवन ऊंच विचार सुखी जीवन का आधार।
जी प्रोफेसर साहब, पर कई बार ऐसा होता है, अगर मैं बात करूं ब्यूटी की, चलिए मैंने ये भी मान लिया कि मुझे सिंपल रहना है, लेकिन मुझे ब्यूटीफुल रहना भी तो जरूरी है। अभी मैं बात करूं अगर ब्यूटी की, एक होती है इनर ब्यूटी, एक होती है आउटर ब्यूटी। अब इनर ब्यूटी का तो मैं समझ गई कि भाई मेरे अंदर में मैं खूबसूरत हूं, लेकिन मुझे बाहर से भी तो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आज अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है, किसी लड़की की शादी के लिए वो जाती है, अगर उसे लड़के को देखने के लिए जा रही है, वो तो वो सुंदर बन करके जाएगी। सिंपल सी बात है, उसके अंदर वो खूबसूरती को बाहर से वो परफेक्ट बन करके जाएंगे, तो इसमें क्या गलत कर रही है वो?
इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप मेकअप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें गलत नहीं है, लेकिन केवल उसके पीछे जाना, केवल बाह्य सुंदरता से किसी से इम्प्रेस हो जाना या अपनी बाह्य सुंदरता से किसी को इम्प्रेस करना, ये गलत है। मेन चीज जो आपकी आंतरिक खूबसूरती है उसके ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। अब आप देखिए, महात्मा गांधी की तस्वीर देख लीजिए, मदर टेरेसा की तस्वीर देख लीजिए, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की तस्वीर देख लीजिए, क्या वो चेहरे असली में सुंदर नहीं है?
बिल्कुल।
चाहे वो बाहर से लोगों को उतने सुंदर ना भी लगे, लेकिन इम्प्रेसिव है, लोग उनको आदर्श मानते हैं।
क्या आप उनकी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं?
उनकी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। आप एक एक्ट्रेस का फोटो घर में लगा लीजिए और साथ में एक किसी देवी का या जिनके नाम मैंने अभी लगाइए, बोले इन किसके आगे आदमी का सिर झुकेगा, किसको लोग अच्छा कहेंगे?
सही बात है।
तो इसका मतलब ये जो बाहर की ब्यूटी है ये जस्ट एक धोखा है, एक टेम्परेरी हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है, दूसरों को भी दे रही है, केवल इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप ध्यान देते हैं, कोई बुराई नहीं है। हम सुंदरता के अगेंस्ट नहीं है, सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन जो असली सुंदरता है, जो आपके गुणों के कारण है, जो आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी अगर पॉजिटिव है उसके कारण है, आपके अंदर एक हुनर है उसके कारण है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भाइया सुंदरता आपको धोखे में डालकर क्या करती है कि आदमी के गुणों की कदर होने के बजाय आप उसकी सुंदरता की कदर कर रहे हैं। आदमी की कदर उसके गुणों के वजह से होनी चाहिए, उसकी प्रतिभा की वजह से होनी चाहिए, उसके हुनर की वजह से होनी चाहिए, ना कि इस वजह से कि वो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है।
अगर मैं बात करूं देवी देवताओं की, वो इतने सुंदर कैसे होते हैं? उनके चेहरे पर मैं एक भी शिकन नहीं देखती। इतने ब्यूटीफुल मैंने शायद मिस वर्ल्ड को भी नहीं देखा, मिस यूनिवर्स को भी नहीं देखा, या मिस्टर यूनिवर्स को भी नहीं देखा।
जी,
क्या है इसमें ऐसा स्पेशल?
बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि ये जो देवी देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, वो कितने सुंदर होते हैं। हालांकि उन्होंने गहने भी पहने होते हैं, श्रृंगार भी उनका किया होता है, और लेकिन वो आर्टिफिशियल मेकअप कभी करते हैं देवी देवता? कभी क्रीम लगाते हैं, कभी पाउडर लगाते हैं? नहीं लगाते, कभी सुना ही नहीं उनके बारे में। वो नेचुरल ब्यूटीफुल है, और नेचुरल ब्यूटीफुल होने का कारण ये है कि उनके अंदर आंतरिक ब्यूटी है।
अच्छा।
देवता मतलब जिसके अंदर दिव्य गुण हों, डिवाइन क्वालिटीज हों, तो वो गुणों के मूर्त हैं। उनके अंदर अच्छाइयां इतनी भरी हैं, डिवाइन क्वालिटीज इतनी भरी हैं, वैल्यूज इतनी अंदर भरी हैं कि उनका चेहरा भी वैसा ही सुंदर है, और विदाउट एनी मेकअप, और वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। उनके चेहरे से ही इतनी खुशी लोगों को मिलती है, तो असली में वो जब हुए होंगे तो उनका जीवन कितना आदर्श रहा होगा।
सही बात है।
तो इसलिए देवताओं के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि उन्होंने भी श्रृंगार उनका भी हुआ है, गहने उनको भी पहनाए गए हैं, लेकिन कोई देवी देवताओं के प्रति कभी गलत दृष्टि से देखता होगा उनको? और दुनिया में कोई एक्ट्रेस जा रही है या कोई और जा रहा है जिन्होंने आर्टिफिशियल मेकअप किया है, उनकी तरफ लोगों की नजर क्यों खराब होती है? क्योंकि वो अंदर से गुणवान नहीं है, वो केवल बाहर से गुणवान है। और देवी देवता बाहर से भी सुंदर, अंदर से भी सुंदर, और जो दोनों तरफ से सुंदर है वो सोने पे सुहागा है, और उनके अंदर वो क्वालिटीज होने के कारण वो पूज्य है, उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। तो हमें ये उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपना जीवन इन देवी देवताओं की तरह इनर ब्यूटी की तरफ ध्यान देकर, आंतरिक सुंदरता, अपने विचारों की सुंदरता, अपने हृदय की सुंदरता, इसके ऊपर फोकस करके अपने जीवन के अंदर क्वालिटीज को लाएंगे तो हमारा भी जीवन उनकी तरह बन सकता है।
जी प्रोफेसर साहब, हेमा कुमार का ये सवाल है दिल्ली से। ये पूछती है कि इनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी जब वो बाल अवस्था में थी, उनके ऊपर एसिड गिर गया था और चेहरा काफी खराब हो गया था उनका, लेकिन वो बड़ी होती गई, आखिर वो लड़की है, उनकी भी भावनाएं हैं, वो शादी तो शायद कभी भी कर नहीं पाएंगी क्योंकि उनसे कोई भी उन्हें एज अ वाइफ स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उनकी क्या गलती थी, ऐसा क्या है? वो अंदर से तो बहुत अच्छी लड़की है, वो अंदर से बहुत सादगी से जिंदगी को बिता रही है, तो उनकी क्या गलती है जो जिंदगी ने उनके साथ ऐसा किया?
सबसे पहले तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जिंदगी ने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जो उन्हें लग रहा है कि ये गलत हुआ है, पहले तो इस अवधारणा को वो समाप्त करें, कुछ भी इस दुनिया में किसी उनके साथ गलत हुआ ही नहीं है। जब तक वो सोचेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो कभी भी अपने अंदर सुख वाली फीलिंग, हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं ला सकेंगे। कर्मों का हिसाब किताब हमें समझना पड़ता है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है, जिसे हम प्रेजेंट एंगल से देखते हैं कि ये गलत है, तो वो कर्मों का हिसाब किताब होता है।
अच्छा।
तो कर्मों का हिसाब किताब चुकते हुआ उन्हें ये खुशी महसूस करनी चाहिए कि हमने हो सकता है किसी का नुकसान किया हो कभी, और अब उन्होंने मेरा नुकसान करने की जो कोशिश की है उससे मेरे कर्मों का जो अकाउंट था वो सेटल हुआ है। तो ये पॉजिटिव सिंबल है, मेरा अकाउंट सेटल हुआ है। मैं क्यों ये सोचूं कि मेरे ऊपर मेरा चेहरा खराब किया गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। अगर ये नेगेटिव तरह से हम सोचेंगे तो सचमुच ही वो फीलिंग आने लग जाएगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें और अपने मन के अंदर ये प्रोग्राम डाल दें कि असली सुंदर वही होता है जो गुणों के कारण सुंदर होता है। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, केवल बाहर की है। तेजाब चेहरे पे डाल दिया लेकिन को मन के ऊपर तेजाब डाल सकता है? मन पे तेजाब तब डलेगा जब मैं ये गलत थॉट अपने अंदर लाऊंगी या लाऊंगा कि मेरी जिंदगी उसने तेजाब डाल के खराब कर दी। तो हम उस वक्त ये सोचें कि उसने जो करना था सो किया, जो होना था सो हुआ, कानून ने जो करना था वो करेगा, लेकिन मुझे उसकी गलती के कारण अपनी जिंदगी को परेशानियों से नहीं भरना है। मुझे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है कि मैं कैसी भी सर्कमस्टांसिस में रह के अपने आप को खुश और खुशनुमा रख सकती हूँ। मुझे उससे घबराना नहीं है। उल्टी सोच लोग अगर आपको कहें या उसे कहें कि आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन थॉट्स को मन में नहीं लाना है, बल्कि उस घटना से एक सीख लेके कि अब मुझे जिंदगी को और पॉजिटिव बनाना है और अच्छी तरफ लगाना है, तो वो लड़की अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ जी सकती है जैसे दूसरे लोग जीते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी उसको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और साथ में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन वाले ख्यालात अपने मन में लाने पड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव प्रोग्रामिंग माइंड की इतनी जल्दी नहीं होती। अच्छे थॉट्स नहीं आते, हीन भावना के आते हैं। हीन भावना के थॉट्स बड़ी जल्दी आते हैं क्योंकि सब लोग उसको वही बातें करेंगे। अब उससे अपने अंदर पॉजिटिव बातें भरनी है और वो पॉसिबल होगा जब वो राजयोग मेडिटेशन की तरफ थोड़ा अपना झुकाव करे। मेडिटेशन डेली हर रोज अपने माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम मेडिटेशन में दे तो धीरे धीरे जो हीन भावना इन्फिनिटी कम्प्लेक्स उसके अंदर आया है वो निकल जाएगा और आम लोगों की तरह जीवन बहुत आसानी से जी सकती है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल तक बन सकती है।
बहुत अच्छा ये जवाब था प्रोफेसर साहब। अभी दूसरा सवाल आता है ऋचा चड्ढा जी का जो कि शिमला से हैं। ये पूछती हैं कि इनके जो हस्बैंड है ये उन्हें क्योंकि ये गांव से आई हुई सिंपल सी लड़की है तो वो उतनी ज्यादा फैशनेबल नहीं है, उनको फैशन वगैरह समझ में नहीं आता, लेकिन उनके हस्बैंड काफी ज्यादा आसपास के फैशन में चकाचौंध में खोते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी सिंपल सी वाइफ की जो ब्यूटी है, अंदर की जो खूबसूरती है, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ये काफी ज्यादा डिप्रेस होती जा रही हैं। इनके मन में काफी सारे गलत भावना आती जा रही है, बुरे बुरे संकल्प आ रहे हैं मन में है कि मैं क्या करूं जिससे मेरे हस्बैंड मुझे समझ पाए कि मेरी भी खूबसूरती है, मैं भी एक खूबसूरत इंसान हूं, भले मैं फैशनेबल नहीं हूं। ऐसे में क्या वो फैशन की तरफ अपने आप को ज्यादा इंक्लाइन करने लगे या क्या करे जिससे उनके हस्बैंड उन्हें समझ पाए?
उन्हें मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उन्हें अपने हस्बैंड को भी ये समझाना चाहिए, जो ये लेक्चर्स ये सीरीज वो सुन रहे हैं, तो यहां से अच्छी बातें उनके दिमाग में बिठाएं कि फैशनेबल होना जिंदगी का आधार नहीं है। जिंदगी फैशन से नहीं चलती, जिंदगी में चलने के लिए तालमेल होना बहुत जरूरी है, विचारों में समानता होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो वो अपने हस्बैंड को ये बातें उनके साथ वो रहते हैं धीरे धीरे समझा सकती हैं और साथ में अपने मन में ये बात लाएं कि मुझे अपना जीवन, अपना विचार, अपने कर्म, अपना व्यवहार, डीलिंग उनके साथ इतनी अच्छी रखनी है कि उनका ध्यान जो ये फैशन की तरफ जा रहा है कि मेरी वाइफ फैशनेबल होती, हाई फाई होती, तो उससे वो निकल जाए। और उनको ये रियलाइज होगा कि अच्छे कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बन जाता। अच्छे कपड़े, सिंपल कपड़े होते हुए भी अगर व्यक्ति अंदर से मजबूत है, सुख दुख में आपके साथ है और आपकी मदद करता है, कोऑपरेटिव है, उससे बढ़कर कोई लाइफ पार्टनर हो नहीं सकता।
बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब आपने, खूबसूरती अंदर से आती है ना कि बाहरी कोई भी चकाचौंध से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
थैंक यू।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं खूबसूरती की, इसके कई सारे पहलू आज हमने देखे। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत बात हमने ये जानी कि जब हम दूसरों की खूबसूरती को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो अंदर की इनर ब्यूटी है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसके लिए आज मेरी आपको एक ही टिप है, जब आप किसी को देखें तो उनकी अंदर की खूबसूरती को सबसे पहले नोटिस करिए, फिर उसे एनालाइज करके और फिर उनसे दोस्ती कीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि उनके अंदर की खूबसूरती से आप दोस्ती कर रहे हैं, ना कि उनके चकाचौंध से। इसी बात के साथ थैंक यू सो मच। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं इन नंबर्स पर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Thank you.